खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, सारी रात की हफाजत और निगहबानी के लिए कि तू भला है और तेरी शफकत अबदी है। ऐ बाप, यसु मसीह नासरी के नाम में तेरे हजूर आता हूँ। खुदावंद, आज जो कलाम का बीज बोया जाए वो हम सब के लिए खुदावंद खुदा 100 गुना फल लाए। हम सब खुदावंद खुदा आज के कलाम के वसीला से खुदावंद अपनी जिंदगियों में बरकत पाने वाले बने और आज का कलाम हम सब की रहनुमाई का वसीला ठहरे और हम तमाम लोगों की कमियों कमजोरियों पर उंगली रखने वाला बने, ताकि खुदावंद हम सब के रास्ते दुरुस्त हों और तेरी ज़मीन पर इस ज़िंदगी को खुदावंद खुदा जो तूने दी है कसरत की ज़िंदगी को बसर करने वाले बने। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत से पैगामात और बहुत से मोजज़े और बहुत से काम इस ज़मीन पर किए, इसीलिए हम उसकी ज़िंदगी में से देख रहे हैं, सीख रहे हैं, ताकि क्या करें, उन पर अमल करें। तो जब जब यीशु मसीह तालीम देता था तो 4 मुख्तलिफ किस्म के लोग उस हजूम में होते थे और उस हजूम के बारे में यहाँ पर आज हम देखेंगे कि आज भी ऐसा ही है। जैसे उस दौर में चाहे मूसा नबी कलाम कर रहा है, चाहे खुदावंद यीशु मसीह कलाम कर रहा है, ऐसा रवैया हमें नजर आता है, तरीका नजर आता है जब कलाम किया जाता है। तो मेरे साथ निकालें आज सुबह लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 8वां बाप, उसकी 4 आयत से आपके लिए पढ़ूंगा और हम यहां पर सीखेंगे बीज बोने वाले की तमसील से। तो बीज बोने वाले की तमसील में 4 मुख्तलिफ जमीनें बयान की गई हैं और वो कौन है, 4 मुख्तलिफ लोग हैं। तो यहां पर लिखा है, फिर जब बड़ी भीड़ जमा हुई और हर शहर के लोग उसके पास चले आते थे, उसने तमसील में कहा कि एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रौंदा गया और हवा के परिंदों ने उसे चुग लिया और कुछ चट्टान पर गिरा और उगकर सूख गया, इसलिए कि उसको तरी ना पहुंची, और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया, और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने पुकारा, जिसके कान हो वो सुन ले। जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये कलाम किया और बुलंद आवाज से ये बात कही तो लोगों के अंदर सवाल पैदा हुआ और आगे हम देखते हैं कि इस तमसील का मकसद क्या था। जैसे आज हमारे दिलों में ये सवाल है कि यीशु मसीह के कहने का मतलब क्या है। अगर हम सुन रहे हैं तो हमारे दिल में ये सवाल है कि उसका मकसद क्या है कि राह के किनारे चट्टान के ऊपर और फिर झाड़ियों में और फिर अच्छी जमीन पर। सवाल ये है कि क्या हम सुन रहे हैं? आकाश, क्या आप सुन रहे हो? उसके शिगिर्दों ने उससे पूछा कि ये तमसील क्या है। हम ऐसे तालबिलम खुदा के कलाम के बने कि जिसकी हमें समझ ना आए, हम खुदावत के कलाम में से पढ़कर पूछें कि मुझे इसकी समझ नहीं आई, इसका क्या मतलब है। क्योंकि अगर हम कहें कि हमने जो कुछ सुना है उसकी समझ आ गई है तो फिर हम बहुत दफा अपने आप को अपनी समझ से ज्यादा समझदार बनाने की कोशिश करते हैं।
बहुत दफा मुझे समझ नहीं आती और मैं खुदावन से कहता हूं, खुदावन इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इससे तेरा क्या मकसद है, इससे तू मुझे क्या सिखाना चाहता है, ताकि तेरे दूसरे लोगों तक उसे पहुंचाया जाए। सो शिगिर्द इस जरूरत को महसूस करते हैं, क्योंकि बहुत दफा यीशु मसीह देखता है कि उसके शिगिर्द सुन लेते थे लेकिन उनको समझ नहीं आती थी। इससे बेहतर है कि हम सुनकर कुछ अपना ही मतलब बना लें, बेहतर यह है कि हम पूछें। पुराने अहदनामा के लोगों ने बहुत सी ऐसी बातें की जो खुदा ने कही, लेकिन उस कहे का उन्होंने अपना ही मतलब बनाया हुआ था। जैसे मत्ती की इंजील 23वें बाब में यीशु मसीह ने कहा, अफसोस तुम पर ए फकीयों और फरीसियों, कि तुम सोने के मकदस पर कसम खाने वालों को के लिए तो कुछ नहीं कहते, लेकिन उसके लिए कहते हो कि जो सोने के मकदस के सोने की कसम खाए उसको क्या लिया जाए जी, उस पर हरजाना लगाया जाए, उसको हदिया देना होगा क्योंकि उसने मकदस के सोने की कसम खाई है। लेकिन खुदा के मकदस उसके घर की यीशु मसीह उनको कहता है तुम कोई कदर नहीं करते। हो गई ना क्लियर बात। यीशु मसीह ने कहा कि तुम सौंफ और पुदीने और धनिये पर तो दायकी देते हो, लेकिन जो बड़े हुक्म थे उनको तुमने छोड़ दिया। और वो कौन से थे? रहम करना, इंसाफ करना, तरस खाना। तो यहां पर शिगिर्द क्या करते हैं? उसके शिगिर्दों ने उससे पूछा ये तमसील क्या है, क्योंकि यीशु मसीह ने अभी अभी कहा कि बीज बोने वाला बीज बोने को निकला, कुछ राह के किनारे गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ पथरीली जमीन पर गिरा और कुछ अच्छी जमीन पर। क्योंकि बहुत से शहरों के लोग उसके पास आए और इस पंडाल में चार मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, जैसे हर इबादत में हम देखते हैं, हर इबादत में चार मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, आप जहां कहीं भी चले जाएं। तो यहां पर जब यीशु मसीह ने यह तमसील कह दी और कहा कि जिसके कान हो, हम हैरान होंगे कि यीशु ने क्यों कहा कि जिसके कान हो, हर फर्दे बशर हर जानवर को कान लगे हुए हैं, ऐसे है ना जी, भैंस के कान हैं, बकरी के कान हैं, आदम के बनाए हुए तमाम आदम पर और आदम के जितने भी बनाए रखे गए जानवरों के नाम देखते हैं उन सब के कान हैं। तो यीशु मसीह क्या कहता है, उसने पुकार के कहा जिसके कान हो वो सुने। क्यों कहा? क्योंकि बहुत दफा हम बैठे होते हैं लेकिन सुनते नहीं। जैसे ये बच्ची गीतों की तरफ उसका ध्यान है, जैसे वो बच्चा किसी चीज के साथ नकली नोटों के साथ खेल रहा है, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा हमारे कान हैं लेकिन हम बहुत दफा सुनते नहीं। सुनने से मुराद यानी कि हमारी तवज्जो उसकी तरफ नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने ये कड़वी बात, ये हकीकी सच लोगों को जब देखा बड़ी भीड़ को, तो कहा कि यहां पर चार किस्म के लोग हैं और शिगिर्दों को समझ नहीं आई। शिगिर्दों ने पूछा, हम भी पूछें कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। सलूका 8 बाब उसकी 10वीं आयत में उसने क्या कहा, उसने कहा तुमको खुदा की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर औरों को तमसीलों में सुनाया जाता है ताकि देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना समझें। यह खास इसराइल के लोगों के लिए यशाया नबी की तरफ से सहीफा था कि खुदावन खुदा कलाम करेगा, वो देखेंगे पर ना देखेंगे, वो वो सुनेंगे पर ना समझेंगे, क्योंकि उनके दिलों पर क्या हो गई है जी, चर्बी चढ़ गई है। तो यीशु बीज बोने वाले की तमसील को समझाता है, आए हम इसमें से सीखें वो क्या सिखाना चाहता है। तो 11वीं आयत में उसने कहा, वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है। बीज क्या है जी? खुदा का
कलाम।
बीज क्या है जी? खुदा का
कलाम।
सो बोने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह कलाम कर रहा है तो वो बोने वाला है। आज कलाम अगर मैं सुना रहा हूं तो मैं उसका कलाम सुना रहा हूं, अपना नहीं, इसलिए उसका कलाम बोया जा रहा है और वो क्या है जी? बीज की मानद है। और 12वीं आयत में लिखा है, हम चार जमीनों को देखेंगे, ये चार मुख्तलिफ ग्रुप कह सकते हैं, मुख्तलिफ लोग कह सकते हैं। तो पहला ग्रुप या पहले लोगों को किससे मुराद कहा गया है? राह के किनारे के वो हैं जिन्होंने सुना, फिर अबलीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है, ऐसा ना हो कि ईमान लाकर निजात पाए। तो जब जब किसी भी इबादत में आप जाएं, वहां पर कोई ना कोई होगा जो राह के किनारे की जमीन है कि वो कलाम को सुनता है लेकिन उसे क्या करता है? कबूल नहीं करता। क्योंकि यहां पर लिखा है अबलीस आकर उस कलाम को उस दिल से छीन ले जाता है, ऐसा ना हो कि कलाम को सुनकर ईमान लाए और निजात पाए। सो हर एक इबादत में जहां कहीं भी आप चले जाएं, कोई ना कोई है जिसे क्या है जी? निजात का पैगाम अभी तक कबूल नहीं किया। तो ये वो बंदा है, ये वो बंदी है जिसने कलाम को सुना है, यीशु मसीह के बारे में सुना है कि वो कवारी मरियम से पैदा हुआ है, उसकी पैदाइश मौजदाना हुई है, वो खुदा का बेटा है, वो हर सबूत से खुदा की तरफ से भेजा गया है, लेकिन बावजूद वो कलाम सुनने के उस पर ईमान नहीं लाता। लब पे आती है दुआ बनकर कलाम। यीशु ने इसीलिए कहा, जिसके कान हो वो सुने। हम कैसे सुनते हैं? दूसरी जमीन जी, और चट्टान पर के वो हैं जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं लेकिन जड़ नहीं रखते, मगर कुछ अरसा तक ईमान रखकर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। इसे कह सकते हैं कि ये वो ईमानदार है जिसने खुदा के कलाम को सुना, कबूल कर लिया, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखी। जड़ बंदा क्यों नहीं रखता? किसी पौधे को जब उसकी जड़ क्यों सड़ जाती है? पहली बात, जब पौधा लगाया जाता है, अगर उसकी जड़ों के नीचे की जमीन साफ सुथरी ना हो तो क्या होता है जी? उसकी जड़ों को पानी या खुराक या तवानाई मिलती है? नहीं। अगर हम जड़ों के ऊपर तोड़ा या शापर चढ़ाकर उसे जमीन में खोदकर, जमीन खोदकर उसे गाड़ दें और फिर कहें कि जी दरख्त बढ़े, तो कितनी मुश्किल होगी, क्योंकि उसकी जड़ों को हवा नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा और वो दरख्त क्या होगा जी? बढ़ेगा नहीं। सो ये हम देख सकते हैं कि दूसरा कौन है, वो चट्टान पर के हैं जो, वो कौन से लोग हैं जो कलाम को सुनकर खुशी से कबूल कर लेते हैं, मान लेते हैं यीशु मसीह निजात दहिंदा है, मान लेते हैं कि यीशु मसीह हमारे इत्मीनान और तसल्ली का वसीला है, लेकिन जड़ नहीं रखते। इससे मुराद क्या है? यानी कि वो सुनकर दोबारा खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में मसलसल तौर पर जगह नहीं देते। ठीक जैसे पौधे को उसकी गोडी ना की जाए, उसे खाद ना डाली जाए, उसे पानी ना दिया जाए, उसे रोशनी ना मिले, उसे ऑक्सीजन ना मिले, तो वो दरख्त क्या होगा? उसकी जड़ें सड़ जाएंगी। वैसे ही हर इबादत में कोई ना कोई ईमानदार होता है जो यीशु पर ईमान तो रखता है लेकिन उसकी रूहानी जिंदगी क्या है उसमें रुकावट है। और रुकावट क्या हो सकती है? दुआ ना करना, प्रस्तुति ना करना, बाइबल को ना सुनना, ना पढ़ना, ना उस पर अमल करना। और वो कह सकते हैं कि जी ऊपर ऊपर से मसीही और अंदर से कोई फल नहीं। तो ये दूसरी किस्म का वो बंदा है जो चट्टान पर का बीज है, जो चट्टान की तरह है, क्योंकि चट्टान के ऊपर अगर कोई पौधा या कोई दरख्त या कोई बेल उगे तो वो ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती, क्योंकि जड़ नहीं पकड़ती। हमें भी यीशु मसीह में क्या करना है जी? जड़ पकड़ना है ताकि उसमें कायम रहें। तो ये दूसरी किस्म का बंदा है जी। तीसरी किस्म का जी, ये तीसरा कौन है? और जो झाड़ियों में पड़ा उससे वो लोग मुराद हैं जिन्होंने सुना, लेकिन सुनते लेकिन होते होते इस जिंदगी की फिक्रों और दौलत और ऐश व इशरत में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। ये ऐसे ईमानदार कह सकते हैं कि जो कलाम को सुनते भी हैं लेकिन दुनिया की फिक्रों में फंस कर रह जाते हैं। हनन्याह और सफीरा ने कलाम को सुना, हनन्याह और सफीरा ने लोगों को देखा, हनन्याह सफीरा के ने पत्रस और यहन्ना और दूसरे तमाम शिगिर्दों के वसीला से वो तमाम मौजज़ा देखे। अगर हम इमाल चार बाप को उसके आखिर में पढ़ें तो हनन्याह सफीरा ने लोगों को देखा वो क्या कर रहे हैं। पांचवें बाप में पढ़े उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अपनी जायदाद को बेचकर खुदा को दे देंगे, लेकिन दुनिया की फिक्र और दौलत ने उनके दिल में क्या डाल दिया जी? शक डाल दिया। उन्होंने ऐसा किया। पुराने अहदनामा में बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने रुपए पैसे के लिए क्या किया जी? अपनी जिंदगी को खराब कर दिया। पालूस रसूल ने अहदनामा में जब हम तिमोथियुस के खत को गालमन पढ़ते हैं तो वो कहता है कि जी दौलत की वजह से बथेरे लोगों के ईमान का जहाज क्या हो गया है जी? तबाह हो गया है। और वो इस दुनिया की ख्वाहिशों में फंसकर रह गए। इसलिए हमें क्या करना है, कौन सी जमीन बनना है कि वो ऐसे हैं जो इस जिंदगी की फिक्रों और दौलत व ऐश व इशरत में फंस जाते हैं और उनका फल पकता नहीं। इससे मुराद हो सकता है कि वो लोग हैं जो इस दुनिया की फिक्र में अपने आप को नुकसान दे सकते हैं और उनकी रूहानी जिंदगी का जो फल है वो कभी भी पकता नहीं। सो इससे बहुत से लोग मुराद हो सकती है। हनन्याह सफीरा जैसे, उन्होंने खुदा से झूठ बोला और वो वक्त से पहले, इससे पहले के उनकी रूहानी जिंदगी का फल पकता, वो पत्रस और दूसरे शिगिर्दों की हजूरी में उसका और उसकी बीवी दोनों क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रूह कुद्दस से झूठ बोला। तो ये है ये तीसरा ग्रुप और यहाँ तीसरे किस्म के लोग। चौथी किस्म के लोग कौन से हैं? मगर अच्छी जमीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रखते हैं और सब्र से फल लाते हैं। तो हमें कौन सी जमीन बनना है? राह के किनारे की जमीन, झाड़ियों वाली जमीन, चट्टान की जमीन? नहीं, हमें कौन सी जमीन बनना है? अच्छी जमीन बनना है। अच्छी जमीन के कौन है? वो जो कलाम को सुनकर क्या करते हैं जी? अमल करते हैं। और ये भी लिखा कि वो रातों रात ही दाऊद बन जाएंगे, मूसा बन जाएंगे, इब्राहिम बन जाएंगे, पालूस बन जाएंगे। लिखा है मगर अच्छी जमीन पर के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले رہتے ہیں. اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور صبر سے پھل لاتے ہیں. تو مسیحی زندگی یہ چوتھی قسم کی زمین وہ اچھی زمین ہے جس میں بیج بویا جاتا ہے, جس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے, جسے پانی وقت پر دیا جاتا ہے, جسے وقت پر اس کی گوڈی اور اس کی کھاد اور اس کی بندی کی جاتی ہے, تاکہ جیسے بابا صدیق پیچھے بیٹھا ہے, ایلڈر یونس بیٹھا ہے, کرس بیٹھا ہے, یہ زمین کے کام کو کرتے ہیں, ان کو پتا ہے. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں تو جا کر یہاں پر دیکھیں کہ کس طرح بیج بونے کے بعد کیا کیا جاتا ہے, تاکہ وہ 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد جو بھی عرصہ ہے اس بیج کا وہ اگ کر کیا لائے جی, پھل لائے. تو ہمیں اچھی زمین پہ بننا ہے, ہمیں ہر روز کہنا ہے خداوند سے عمدہ اور نیک دل میں ہر ان باتوں کو لیں. سو دلوں میں کیا لینا ہے؟ خداوند مجھے محبت کرنا نہیں آتی, جیسے تو نے ہم سے محبت کی ہے ہمیں بھی ایک دوسرے سے مسیحی بہن بھائیوں والی محبت کرنا سکھا. خداوند مجھے ترس کرنا نہیں آتا, مجھے ترس کرنا سکھا. خداوند مجھے معاف کرنا نہیں آتا, مجھے معاف کرنا سکھا. خداوند خدا میں اس بات میں کمزور ہوں کہ خداوند میں تیرے کلام کی گواہی دوں. آپ کی اور میری کوئی بھی کمزوری, کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی بھی روحانی ترقی میں رکاوٹ ہو سکتی ہے, اس رکاوٹ کے لیے دعا کریں. اگر دعا نہیں کریں گے تو خداوند خدا بھی اس دعا کا جواب نہیں دے گا. بہت سی دعائیں ہیں جن کو ہم نہیں مانگتے, وہ جواب دیتا ہے. روحانی ترقی وہ کام ہے جس کے لیے ہمیں خود اس بات میں مبتلا ہونا ہوگا کہ خداوند خدا میں یہ چاہتا ہوں, یہ چاہتی ہوں کہ میں ترقی کروں, میں تیری پہچان میں بڑھوں, میں پھلدار مسیحی بہن تیری بندی بنوں, تیرا بندہ بنوں, تاکہ میری زندگی سے خداوند خدا تیرے نام کو کیا ملے جی, عزت اور جلال ملے. اور صبر سے پھل لاتے ہیں. ہمیں اس لیے کیا کرنا ہوگا؟ جیسے زمین کی ضرورت کا بونے والے کو پتا ہے کہ کیا ضرورت ہے, ویسے ہی خدا ہماری ضرورت کو چاہتا ہے پورا کرے. لیکن کیا سوال یہ ہے, ہم اچھی زمین بنیں گے؟ اگر ہم راہ کے کنارے کی زمین ہیں تو وہ پاؤں کے نیچے کچلا جائے گا جو کچھ بھی سنا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ ابلیس آ کر چرا لے جاتا ہے, جیسے ابھی یہ بچہ اسی بات میں لگا ہوا ہے. یہ سارا مجھے دے دو تو آپ کی فکر میں ختم کروں, وہ بھی سارا کچھ دے دو مجھے. ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کریں گی جی, ہماری زندگی سے کلام کو چرا لے جائیں گی. کھیلنا بری بات نہیں, لیکن ہر ایک چیز کا کیا ہے جی, وقت ہے. تو یسوع مسیح یہاں پر ان کو کہتا ہے جس کے کان ہو وہ سنے. سو آئیں ہم خداوند کے حضور جھکیں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند ہماری زندگی میں جو بھی رکاوٹ ہے, چاہے وہ یہ نقلی نوٹ ہے جن سے ہم نے اپنی توجہ کو بانٹا ہوا ہے, چاہے کوئی پروگرام ہے, چاہے کوئی دنیا کی فکر ہے, یا کوئی ہماری اپنی آزمائش ہے, ہم سب اپنے امتحانوں سے واقف ہیں, آزمائشوں سے واقف ہیں. خداوند سے کہیں کہ اس رکاوٹ کو دور کر. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ دعا کرو اور خود نہیں کرتا, خداوند اس دعا کی رکاوٹ کو دور کر. میں بائبل اپنے گھر میں 2000 والی رکھتا ہوں لیکن نہیں پڑھتا, خداوند اس رکاوٹ کو دور کر. خداوند خدا سے اپنی رکاوٹوں کو, مسئلوں کو کہیں تاکہ وہ دور کرے. لشکروں کے رب یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیرے گزارتا ہوں, تیرا خداوند خدا کلام ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو. یسوع کے پاک اور جلالی نام میں یہ دعا مانگتا ہوں.